मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 25 मार्च 2019 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। फ्रेंड्स, पहले आपको ध्यान होगा, मैं आप सबसे बायोग्राफी के बारे में कुछ बातें किया करता था, किसी एक व्यक्ति के जीवन के एक छोटे से प्रसंग को उठाकर और फिर उसके आधार पर हम लोग जीवन के बारे में कुछ बातचीत किया करते थे। आज मैं किसी बायोग्राफी से तो उसके जीवन को नहीं उठा रहा हूं, सच पूछिए तो एक ऐसे जीवंत व्यक्ति को, जीवंत महिला को, कह लीजिए लड़की को आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो अपने आप में मैं समझता हूं कि न केवल युवाओं के लिए ही बल्कि दुनिया के हर उस व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करती है, जो अपनी जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं बावजूद इसके कि उन्हें लगता है कि वे कुछ भी नहीं कर सकते। और इस तरह से आज के इस अपने विषय को मैं नाम देना चाहूंगा, एक जांबाज लड़की की दास्तान। फ्रेंड्स, नाम बेहतर होगा कि मैं बाद में बताऊं, लेकिन ये जो जाबांज की मैं बात कह रहा हूं, जो बहादुर लड़की का खिताब जो मैंने अपनी ओर से दिया है, हालांकि ये खिताब उनके लिए छोटा है, ये मत समझिए कि इसलिए दिया है क्योंकि वो एक लड़की है, नॉट एट ऑल, है शब्द पे ध्यान दीजिएगा, वो अभी भी हैं और बिल्कुल कुछ ही समय पहले ही उन्होंने बहुत एक जबरदस्त सफलता हासिल की है। और सफलता ये कि उन्होंने आईएएस की परीक्षा में 420वां स्थान हासिल कर आज वो बकायदे एक सहायक आयुक्त रेवेन्यू के पद पर पदस्थ हैं। लेकिन ये तो कोई भी लड़की कर सकती थी, उसकी वजह से मैं जाबांज नहीं कर रहा हूं। जब मैं और आपको तथ्य बताऊंगा तब शायद आपको पता लगेगा कि सच में बहादुरी होती क्या है। किसी भी बड़ी चीज को पा लेना बहादुरी नहीं होती है, बहादुरी होती है अवरोधों को हराना, मतलब जहां कहीं कोई संभावना नहीं है, चारों तरफ घनघोर अंधकार ही अंधकार है, डिप्रेशन का माहौल है, किसी से कोई मदद नहीं मिल रही है, और ऐसी स्थिति में अकेले अपनी ही अंदर की शक्ति को जागृत करके कुछ हासिल कर पाना, कोई बड़ा ऐसा काम कर पाना जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएं, लोगों के मुंह से आवाज न निकले और चुपचाप वो अपनी दांतों तले उंगली दबाए हुए उस शख्स को देखते रहें, तो इसे आप कह सकते हैं कि इसने कुछ बहादुर कारनामा करके दिखाया है। दोस्तों, इसी तरह की लड़की जो मुस्लिम परिवार से है, अब आप बाधाओं को देखते रहिए, मुस्लिम परिवार से है, मुस्लिम परिवार में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सामान्यतया ये माना जाता है कि मुस्लिम परिवार में आज भी लड़कियों को उतनी आजादी नहीं है कि वो समाज में जाकर के इतने खुले रूप में इंटरेक्शन करें। और फिलहाल ये जिस मुस्लिम परिवार से हैं, उनका परिवार चूंकि आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर, बहुत ही गरीब परिवार है, तो ऐसे परिवार की लड़कियों के लिए आगे बढ़ना तो और भी मुश्किल हो जाता है। लड़की, ऊपर से मुस्लिम परिवार की लड़की, तीसरी स्थिति कि पिता बेहद गरीब, और चौथी जो स्थिति है वो शायद इससे भी ज्यादा संकटपूर्ण है, और वो ये है कि जब ये लड़की पैदा हुई तो अपने आप में एक तरह से विकलांग बच्ची के रूप में, विकलांग बच्ची के रूप में, ये कि राजस्थान के पाली में ये लड़की, इन लड़की का जन्म हुआ और इनको एक बोन डिसऑर्डर की बीमारी थी, यानी कि अगर हड्डियों को हल्का सा भी झटका लग जाए तो हड्डियां टूट जाती थी। ये इस लड़की की कहानी है। पिता गलियों में फेरी लगा लगा करके सामान बेचते थे और जो कुछ भी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी, तीन भाई बहनों को तब खाने को कुछ मिल जाता था। मां सिजोफ्रेनिया, मानसिक बीमारी की शिकार। सोच करके देखिए दोस्तों, आप इसे थोड़ा सा महसूस कीजिएगा कि क्या इसमें एक भी चीज आपको फेवरेबल लग रही है, क्या सच में ऐसे वातावरण में रह करके कोई लड़की, और इतनी जो शारीरिक सीमाओं से बंधी हुई लड़की है, कोई बड़ा फैसला करने के बारे में सोच भी सकती है, सपने भी देख सकती है। फिर सपनों को सच करना तो एक बहुत ही अलग बात है जो इसने करके दिखाया है। अब आप देखिए, विकलांग पैदा हुई, पांचवीं तक विकलांग बच्चों के स्कूल में पढ़ी, लेकिन आगे पढ़ने पर तमाम तरह की पाबंदियां थी, पढ़ाई का खर्च पिता नहीं उठा सकते थे। तो पिता ने सोचा कि चलें दिल्ली चलें तो वहां शायद कुछ कमाई हो जाए, और वो दिल्ली आ गए एक दिन उनके पिता, और छोटा मोटा सामान और मूंगफली बेचने लगे, और यह लड़की भी पिताजी के साथ अपने फुटपाथ पर उसके काम में हाथ बटाने लगी, और अक्सर फुटपाथ पर ही वो अपने पिता के साथ सो जाया करती थी, लेकिन पढ़ाई जारी रखी। और एक दिन मां भी चल बसी, मां चल बसी, पिता ने दूसरी शादी कर ली, और जब दूसरी मां आई, सौतेली मां जिसे हम सब कहते हैं, तो उसने कहा कि इसकी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है, इसे काम में हाथ बटाना चाहिए, इसे कुछ कमाई करनी चाहिए। एक झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे, लेकिन एक समय ऐसा आया 2001 में कि निजामुद्दीन दिल्ली में जो रेलवे स्टेशन भी है वहां के पास झुग्गी झोपड़ियां थी, वो झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी गई, परिवार बेघर हो गया, अब क्या किया जाए। वहीं त्रिलोकपुरी एक एरिया है, वहां इन्होंने एक खोली ले ली। उस समय ये लड़की 9वीं क्लास में पढ़ती थी, लेकिन अब सवाल यह है कि वो जो खोली ले ली, यानी कि किराया, छोटा कमरा कह लीजिए, अब उसका किराया कैसे दिया जाए। तो खर्च निकालने के लिए इस लड़की ने किया ये कि आसपास के झुग्गी झोपड़ी के जो बच्चे होते थे उनको ट्यूशन पढ़ाने लगी, और उस ट्यूशन से जो आमदनी होती थी बस उसी से वो अपना घर का खर्च चलाने लगी। स्थिति यहां तक आई फिर बाद में कि वो दिल्ली में उस खोली में उसे अकेले ही रहने का फैसला करना पड़ा। अब देखते चले जाइए कि होता क्या है। लेकिन पढ़ाई से उसने अपना नाता बकायदे बनाए रखा। 8वीं में उसने अपने स्कूल में टॉप किया, उसकी वजह से उसको स्कॉलरशिप मिलने लगी। इसके बाद फिर 10वीं और 12वीं में भी उसने लगभग 90% मार्क्स स्कोर किए, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी में एडमिशन लेने के कारण उसे इंटर्नशिप करनी पड़ती, और अगर वो इंटर्नशिप करती तो उसका ट्यूशन छूट जाता, अगर ट्यूशन छूट जाता तो घर का खर्च कैसे चलता। इसकी वजह से उसने साइकोलॉजी सब्जेक्ट छोड़ दिया, बाद में इंटरनेशनल रिलेशन से ग्रेजुएशन किया, और फिर जेएनयू में पढ़ने का मौका मिल गया, जो उसकी जिंदगी का एक टर्निंग प्वाइंट था। वहां उसे स्कॉलरशिप भी मिलने लगी, हॉस्टल में रहने के लिए जगह मिल गई, और मेस में खाना। चूंकि अब जेएनयू में पहुंच गई थी तो दक्षिण कोरिया में भी विकलांगों के प्रतिनिधि के रूप में जाने का मौका मिला, जापान के भी एक इंटरनेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने का मिला। लेकिन दुर्भाग्य ने यही पिंड नहीं छोड़ा। 2012 में एक सड़क की एक ऐसी दुर्घटना हुई कि इस लड़की को उस दुर्घटना ने व्हील चेयर का गुलाम बना दिया। व्हील चेयर अब उसकी दुनिया बन गई। सोच करके देखिए कि क्या स्थितियां होती चली गई। लेकिन पढ़ाई जारी रखी, और इस पढ़ाई जारी रखने से ही सन 2016 में बाकायदे उसने पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस की परीक्षा क्रैक की, उसमें सफलता हासिल की। दोस्तों, ये एक लड़की की कहानी है जो अभी भी हम सबके बीच में है और युवा स्थिति में है। मुझे लगता है कि अब मुझे उनका नाम बता ही देना चाहिए। उनका नाम है उम्मुल खेर। उम्मुल खेर जो अब भारतीय राजस्व सेवा में सहायक आयुक्त असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर हैं। ये छोटी सी कहानी मैंने मित्रों आप सबको सुनाई है। इस कहानी का संदेश क्या है? संदेश हम लोग असली पकड़ने में भूल कर जाते हैं। मेरे पास बहुत से मेल आते हैं रोजाना, लगभग 2-3 मेल तो ऐसे स्टूडेंट्स के आ जाते हैं जो लड़के हैं और बकायदे सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन क्या कि मैं आपकी क्लास तो अटेंड करना चाहता हूं लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण नहीं कर पा रहा हूं। रोजाना इस तरह के मेल आते हैं। क्या आर्थिक स्थिति को हो गया? आपके लिए ये लड़की एक प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणा का झरना है, एक सुलगती हुई एक मिसाल है कि कैसे जब आपके अंदर कोई आग सुलगती है, जब आप किसी चीज को अपना मकसद बना लेते हैं तो उस मकसद की भट्टी में इतनी ज्यादा ऊर्जा लगातार पैदा होती रहती है कि आपको चैन से बैठने नहीं देती। वह आपसे कुछ भी करवा लेगी का मतलब है एक सकारात्मक काम करा लेगी। उन सारी बाधाओं को वो चुटकी में उड़ा देगी। वो बाधाएं उसे दिखाई नहीं देती, उन बाधाओं में उसे संभावनाएं दिखाई देती हैं। उन बाधाओं के पार उसे एक बहुत खूबसूरत वादी दिखाई देती है कि यदि मैं इसे पार कर जाऊंगा, यदि मैं इसे पार कर जाऊंगी तो वहां कोई खूबसूरत वादी, कोई खूबसूरत दृश्य मेरा इंतजार कर रहा होगा और मुझे वहां तक पहुंचना ही चाहिए। एक के बाद दूसरी बाधा, दूसरे के बाद तीसरी बाधा, हर तरह की बाधाएं, आर्थिक बाधाएं, शारीरिक बाधाएं, इमोशनल बाधाएं, समाज की बाधाएं, सपोर्ट में कुछ भी नहीं, इसके बाद भी उम्मुल खेर ने जो करके दिखाया है वो काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ ही नहीं है बल्कि अभिनंदनीय है, पूजा करने योग्य है। यहां सफलता के रहस्य छिपे हुए हैं जो वास्तव में रहस्य भी नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर मकसद के प्रति ईमानदारी है, ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि केवल इच्छा के स्तर पर ईमानदारी है, कर्म की भी ईमानदारी है, तो वह मकसद एक दिन आपके गले में वरमाला जरूर डालेगा। तो उम्मुल खेर आपको एक बहुत इस खूबसूरत सफलता से भी ज्यादा इस खूबसूरत संघर्ष के लिए मैं अपने सारे प्यारे श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। और सच बात यह है कि आपके अंदर जो सुलगते हुए जज्बात हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।